الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم حضرت والا کا یہ شعر ابھی ہم سن رہے تھے اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا نفس کی سرکشی کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ امارہ بالسوء ہے ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امارہ سمجھایا کہ یہ فعال کے وزن پر ہے مبالغے کا صیغہ ہے ایک ہوتا ہے فاعل کوئی کام کرنے والا فعال بکثرت مبالغہ ہو اس میں کرنے والا اور امارہ یہ امر سے ہے یعنی حکم دینے والا کس چیز کا سو کا برائی کا حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نفس کا مزاج جس کو فرمایا تھوڑا سا ترچھا کر دیا میں نے کہا بٹا گیا جی تو فرماتے تھے کہ امارہ بالسوء نفس کا مزاج کیا ہے امارہ بالسوء مثل بچھو یہ حضرت نے فرمایا امارہ بالسوء مثل بچھو اور اس بچھو کو سمجھانے کے لیے حضرت نے سنایا کہ ایک دفعہ دریا میں ایک کچھو وہ جو ہے دریا میں ڈوب رہا تھا ایک بچھو دریا میں ڈوب رہا تھا تو اس کو کچھو نے دیکھا تو اس کو اپنی پیٹ پر سوار کر لیا اور وہ جو کچھوا ہوتا ہے اس کی پیٹ خاص کئی قسم کے پروف سے بنی ہوئی ہوتی ہے تو بچھو نے جب اس کچھو کو سوار کیا اور دریا کے کنارے پہ جانے لگا تو اس کو محسوس ہوا کہ میری پیٹ پر کچھ کوئی چیز ہے تو فرماتے ہیں کہ کچھو نے بچھو سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میری پیٹ پہ تو اس نے کہا کہ میری مجبوری ہے میں اپنی طبیعت سے مجبور ہوں ڈنک مارنا میری طبیعت ہے تو میں ڈنک مار رہا ہوں تو اس نے کہا بھائی اتنا تو خیال کرو میں تمہارا محسن ہوں تمہیں ڈوبنے سے بچایا کچھ تو حیا اور شرم کرو کہ اپنے محسن کے ساتھ یہ معاملہ کہ پیٹ پر گویا چھرا گھوپ رہے ہو تو کچھو نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں آپ کے احسان کو تسلیم کرتا ہوں مجھ سے غلطی آگے بڑھے تھوڑی دیر میں پھر وہی حرکت پھر اس نے سمجھایا اس نے تسلیم کیا پھر معافی مانگ لی پھر چلے پھر وہی حرکت تو کچھو نے کہا کہ بچھو کو سمجھانا پڑے گا तो उसने क्या के उसने क्या किया कि एक डाइव लगाई, गोता लगाया पानी में। अब तो बिच्छू की हालत खराब हो गई, गैर हुई। तो बिच्छू ने कच्छू से कहा, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, जिस तरह से डंक मारना तुम्हारी तबीयत और फितरत और आदत है, उसी तरह पानी में गोता और डुबकी और डाइव लगाना मेरी फितरत और आदत है। तो फरमाया कि देखो, ये नफ्स जो है वो अम्मारा बिस्सू है, सरकश है, सरकशी दिखाता है। इसलिए जब इसको, इस अम्मारा बिस्सू के मिजाज रखने वाले इस नफ्स को जब गुनाह की कुर्बत या जरा आसानी और राहत मिलती है, फौरन ये गुनाह की तरफ भागता है। ये इसका मिजाज है। इसी हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह का शेर है, फरमाते थे, गिजा इस नफ्स सरकश की तू कम कर, इस नफ्स सरकश की तू कम कर, न खा हर रोज जालिम मुर्गो माही। मुर्ग और मछली इसको रोजाना मत खिलाओ। बल्कि फरमाते थे, जब ये बदमाशी करे, नालायक हरकत करे, तो इसके नाश्ता बंद करो, उस वक्त इसको खाना मत खिलाओ। फिर जब वो फिर तौबा की तरफ रागिब होगा, फरमाया फिर आइंदा गुनाह का मौका आएगा, बदनजरी का मौका आएगा, अब आप नफ्स से पूछें, बदनजरी कर लूं? कहेगा, नहीं नहीं, बुरी बात होती है, गुनाह मिलता है। क्यों? फरमाया जब सूफी उसके साथ गालिबाना मुआमला करता है, गालिब होता है, अबू नफ्स बनता है, नफ्स पर गालिब हो, तो नतीजा ये होता है कि नफ्स भी वो दबक के बैठता है। और जब देखता है, नफ्स देखता है कि सब तड़ी लगाता है, करता कुछ नहीं है, तो फरमाते फिर नफ्स जो है वो गालिब हो जाता है। ये फिर शख्स इब्नुन नफ्स बन जाता है, नफ्स इस पर गालिब आ जाता है। इसलिए फरमाए कि इसको, अब रही बात के साथ उसको दबाना मुश्किल लगता है, तो हजरत वाला इस शेर में यही बात फरमा रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखो, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करो, उन पर जिन वो अल्लाह वाले, उन पर अल्लाह ताला की रहमत होती है, तो उस रहमत का असर पास बैठने वालों पर भी होता है, तो उसकी वजह से नफ्स मगलूब हो जाता है। इसलिए फरमाया कि अगर अल्लाह वालों से नहीं दिल की दवा पाता, बहुत मुश्किल था अपने नफ्स सरकश को दबा पाता। ये नफ्स जो है, हजरत फरमाते थे, ओपोजिशन है, और दिल जो है वो विफाक है, और रूह उस पर हाकिम है। लिहाजा जब दिल जो है वो कंट्रोल पावर दिल के पास है, लिहाजा जब रूह अल्लाह वालों की सोबत से कवी और मजबूत होती है, तो उसका विफाक पर कंट्रोल मजबूत हो जाता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि अपोजिशन दुम दबा के बैठती है। और जब रूह गुनाह की वजह से रूह कमजोर हो जाती है, तो विफाक का पर कंट्रोल, दिल पर कंट्रोल कमजोर हो जाता है। इसलिए फरमाया उसी का नतीजा निकलता है कि दिल में बेचैनी, परेशानियां, घबराहट और अंधेरे होते हैं। फरमा ऐसे वक्त में क्या करते हैं? छोटी ताकत बड़ी ताकत से रिक्वेस्ट करती है कि जी हमारा कुछ मदद करे। फरमाया बस यही है, तुम्हारी ताकतें कमजोर हैं, रूह मगलूब हो रही है, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठो और उनसे दरख्वास्त करो, साकिया जामे उल्फत पिला दे, साकिया जामे उल्फत पिला दे, और मेरी इस्लाह की भी दुआ दे। यह होता है इन अल्लाह वालों की सोहबत से। और अल्लाह वाले की पहचान, हजरत फरमाते हैं कि, हजरत का मजमून है एक, उसमें फरमाया कि देखो, हर सोहबत याफ्ता फैज याफ्ता नहीं होता, लेकिन फैज याफ्ता सोहबत याफ्ता होता है, लेकिन फैज याफ्ता कौन है? क्योंकि दावा तो हर कोई कर सकता है, या किसी पर اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ فیض یافتہ نہیں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو صحبت یافتہ فیض یافتہ کب ہوگا؟ جب وہ حیض یافتہ نہ ہو. وہی جب عورت, اب کیسے پتا چلے کہ صحبت شوہر سے حمل ٹھہر گیا, علامت حیض بند ہو گیا. فرمایا اسی طریقے سے یہ شخص گناہوں میں مبتلا ہے, دعویٰ کر رہا ہے فیض یافتہ ہونے کا, اگرچہ صحبت بہت ہے, مدت تو ایک صحبت اٹھائی, لیکن فرمایا کہ اس صحبت کا جو فیض یافتہ ہوگا اس صحبت کا چرچا بھی نہیں کرے گا, کیونکہ حضرت والا نے اس کا ایک اصول اور ضابطہ بھی بیان فرمایا. فرماتے ہیں کہ کیسے سمجھ لوں پا گیا وہ جامع معرفت, کیسے سمجھ لوں پا گیا وہ جامع معرفت, رکھتا ہے جو بھی خود کو نمایاں کیے ہوئے. وہ کہتا ہے میں سب کچھ, میں ایسا میں ویسا, میں نے اپنے شیخ سے بہت کچھ پیا اور حاصل کیا, اور میں نے میرا علم ایسا, میں اتنا مال خرچ کرتا ہوں. یہ دعوے ہیں, گویا کہ وہ اپنی کو نمایاں کر رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو جامع معرفت نہیں ملا, اس کو صحبت تو ملی, صحبت کا فیض نہ ملا, اس لیے فیض یافتہ نہیں ہے. اس لیے حضرت نے ایک عجیب اور مثال سے سمجھایا. فرمایا کہ جو شاخ ایسے سیدھی اکڑی کھڑی ہو, علامت یہ کہ اس شاخ میں پھل نہیں ہے. اور کسی شاخ کیا پھل کا کیسے پتا چلے؟ فرمایا دور سے دیکھ کر پتا چل جائے گا, اس کی عاجزی سے, اس کی تواضع سے, دور سے دیکھ کر پتا چل جائے گا. پھل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں کہ کہاں پھل ہے کہ نہیں. فرمایا شاخ کو دیکھ لو, دور سے پتا چل جائے گا کہ اس شاخ میں پھل ہے کہ نہیں ہے. کیسے؟ اس کے جھکاؤ سے. کیونکہ جس شاخ میں پھل آتا ہے وہ شاخ جھک جاتی ہے, اور جس شاخ میں پھل نہیں ہوتا وہ اکڑی کھڑی ہوتی ہے, اس تک رسائی مشکل ہوتی ہے. اور جس شاخ میں پھل ہوتا ہے اس کو پتھر نہیں مارنا پڑتا, ہاتھ بڑھا کے توڑ لیتا ہے. یہ عاجزی ہے, یہ اللہ والوں کی, یہ اللہ والوں کی عاجزی ہوتی ہے کہ ان سے گویا ملاقات کے لیے دربانوں کا اور اس درگاہ کے دربان حاجب اور چوکیدار کا نہیں, بلکہ ایک عام مسلمان بھی آتا ہے اور مزے سے ملاقات کر لیتا ہے. ایک عام مسلمان بھی, اس کو استفادہ آسان ہوتا ہے. ہمارے پیارے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم, اللہ تعالیٰ حضرت کو خوب صحت عطا فرمائے, ماشاءاللہ طبیعت بہت اچھی ہو رہی ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ مزید اس میں ترقی عطا فرمائے. حضرت کو دیکھا کیسا تشریف فرمائے, چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں حضرت کے پاس پہنچ جاتے, ان سے بھی حضرت کچھ نہ کچھ ہنسی مذاق خوش مزاح. فرماتے دیکھو یہ بچے ابھی چھوٹے ہیں, ابھی سے ان کا دل کھل جائے گا تو کسی اللہ والے سے رابطہ کر سکیں گے. کیسی عاجزی دیکھی, محبت سے, محبت سے ان کو قریب. چھوٹے چھوٹے بچے بھی, طالب علم بھی آتے ہیں, طالب علم کی تو محتمن تک رسائی مشکل ہوتی, اور یہاں عالم یہ ہے کہ جو آتا ہے حضرت کے پاس ہی. یہ ہے کہ گویا کہ اپنے کو نمایاں نہ رکھنا, عاجزی کے ساتھ ایسے رہنا, سبحان اللہ. یہ عملی شکل ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے دوستوں سیکھنے کی ہیں. گویا کہ فیض کی علامت ہے, یہ علامات فیوز و برکات ہے کہ پتہ چلے آج بھی بڑی چیز ہے. ہمارے بزرگوں نے اس کا بہت, اور شیخ کا کام بھی یہی ہے مٹانا. اس لیے حضرت والا رحمت اللہ علیہ یہ شعر بہت سناتے تھے, مکتبے میں عشق کی, مکتبے میں عشق کی جس کی بھی بسم اللہ ہو, مکتبے میں عشق کی جس کی بھی بسم اللہ ہو, اس کا پہلا ہی سبق یارو فنا فی اللہ. مٹانا ہو مٹانا. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے, خواجہ عزیز حسن مزور رحمت اللہ نے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ خدمت میں کیا بات پیش کی, نہیں کچھ اور خواہش میں آپ کے در پر لایا ہوں, نہیں کچھ اور خواہش میں آپ کے در پہ لایا ہوں, مٹا دیجئے مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. अभय साहब मिटाना यानी गोया के अपने को फना कर देना। तो इसको समझिए, इसमें खत्म हो जाना मकसूद नहीं है, बल्कि इसमें एक फायदा है। और वो फायदा को समझाया, फरमाया देखो चाय में शक्कर चीनी मिलाई जाती है, चमचे से हिलाया जाता है, शक्कर और चीनी फना हो जाती है, और जब चमचा सही नहीं चलाते चीनी फना नहीं होती है तो बुरी बात, लेकिन क्या होता है उस चीनी के साथ, वो गटर में चली जाती है, वो गटर में जाती है, वो खत्म। और जो चीनी फना हो जाती है खुद तो उसका वजूद खत्म हो जाता है, लेकिन चाय को मीठा बना देती है। इसलिए शेख का काम होता है, वो जो चमचा है ना स्टील वाला, वो क्या है? चलाते हैं ऐसे खड़खड़खड़ लगा, फिर क्या करते हैं उसको चेक भी करते हैं, ऐसे मार के या यूं उठा के। दो तरीके होते हैं ना चेक करने के, कि चीनी घुली के नहीं घुली, मिट्टी के नहीं मिट्टी, फना हुई के नहीं हुई। उसको या तो चमचा यूं डालते और देखते हैं आई चीनी अभी मौजूद है अभी और मिटाना है, या उसको ऐसे मार मार के देखते हैं। क्यों जनाब? ये दस्तूर है। लादा शेख कभी कोई ऐसा मोहब्बत भरा इम्तिहान लेता है कि ऐसे उठा के देखता है कि जरा इसको निकालें, जरा उठाता है, कभी बयान के लिए खड़ा कर दिया, कभी किताब पढ़वा ली, कभी कोई और बात, फिर देखता है शेख देखता है मिटा के नहीं मिटा। या कभी उसको डांट लगाता है, डांटता है, और उस वक्त वो फजूल तावीलात अबस तावीलात, शेख का मकसद उस डांट से फना करना है और ये तावीलात पेश करता है। तो पता ये चला कि फना और अभी मिटा नहीं है ये, और जब मिट जाता है तो फिर न सिर्फ ये कि उसकी बंदगी में मिठास पैदा हो जाती है, फिर अल्लाह ताला का फजल शेख के सदके में उसको ये भी मिलता है कि उसके पास ये बैठने वाले भी मीठे हो जाते हैं। आप हजरात थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ लाए, इधर भी जगह मौजूद है, थोड़ा थोड़ा आगे आगे तशरीफ लाए। तो उसकी बंदगी में न सिर्फ उसको मिठास और मजा आता है, बल्कि उसके पास बैठने वाले भी हलावत और मजा पाते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए फरमाया कि जो हमारे कुलूब में हमारे नफूस में जो बीमारियां हैं, नफ्स सरकशी दिखाता है, उसके लिए है अल्लाह वालों की सोहबत है। इस सोहबत से अल्लाह ताला इन औलिया अल्लाह के कुलूब में जो मोहब्बत है, वो मोहब्बत जो है वो दवा का काम देती है। उससे आने जाने से, पास बैठने से, मशवरा करने से, मेरे प्यारे दोस्तों, वो कल्ब की बीमारियां, वो रूह की बीमारियां, वो हमारे नफ्स की सरकशियां, वो मिटती है, फना होती रहती है। हर सोहबतों से फायदा होता है। अब ये बात कि जी रोजाना आए, रोजाना आए, तो देखिए रोजाना आने से ये पॉइंट्स बनते हैं। आजकल तो कितने ये फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड आते हैं ना, कि एयरलाइनों में ही कार्ड कि जी आप करें आपके पॉइंट्स बनेंगे। तो पॉइंट्स बनते, जितने पॉइंट में ज्यादती होती है उतने बेनिफिट्स और ज्यादा चीजें मिलती हैं, खसूसियात मिलती है, प्रायोरिटीज मिलती है, और फ्री टिकट भी मिलते हैं, क्योंकि पॉइंट जब ज्यादा होते हैं तो फ्री टिकट भी मिलते हैं। और वो पहले ब्लू से वो सिल्वर, सिल्वर से गोल्डन की पे आ जाता है, तो जितना ज्यादा तरक्की करता है उतना ज्यादा फिर वो लाउंज में मुफ्त में चला जाता है इस सब कार्ड दिखाकर, और जब गोल्ड में आ जाता है तो अपने साथ किसी गेस्ट को भी ले जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आने जाने से बंदगी में तरक्की होती है, आमाल बढ़ते हैं, इसके पॉइंट्स बनते हैं। बस इस पॉइंट्स का नतीजा ये होता है, हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह, हजरत वाला हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक बात फरमाया करते थे, फरमाते थे कि आरिफ की दो रकात गैर आरिफ की 1,00,000 रकात से अफजल है। क्यों? पॉइंट्स उसके पॉइंट ज्यादा है जनाब, कि वो शख्स जो अल्लाह ताला की मोहब्बत और मार्फत अपने कल्ब में रखता है, उसकी इबादत, उसकी कैफियत उस शख्स के मुकाबले में जिसके कल्ब में मोहब्बत और मार्फत नहीं है, और या जो शख्स गुनाह का आदी है, दोनों में बड़ा फर्क होता है। देखिए हदीस शरीफ में एक अमल आया कि जो शख्स मिसवाक करता है اس کی مسواک والی نماز کا ثواب بغیر مسواک والی نماز سے 70 نمازوں سے زیادہ ہے. صلاۃن بسواکن افضل من 70 صلواتن بغیر سواک, کہ وہ نماز جو مسواک والے سے جائے, مسواک کیا جائے وضو میں اور وہ نماز پڑھی, تو اس نماز کا ثواب بغیر مسواک والی نماز سے 70 نمازوں سے زیادہ ہے. دیکھیے یہ عمل غیر نماز کا عمل ہے. یہ تو نماز, اگر کوئی آدمی مسواک نہ کرے اس کی نماز ٹھیک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل درست ہوگی. لیکن ایک خارجی عمل نے نماز پر یہ اثر کیا کہ اس کے ثواب کو بڑھا دیا. تو میرے پیارے دوستو, اسی طرح جو شخص حلال کہنے کا اہتمام کرے, ماں باپ سے حسن سلوک کرے, ان کی خدمت کرے, بیوی سے حسن سلوک کرے, اپنے پڑوسیوں سے اخلاقیات کا مظاہرہ کرے, سنتوں پر عمل کرنے والا ہو, تو اس کی نماز کا ثواب 100,000 رکعت نمازوں سے زیادہ اگر بڑھ جائے تو کیا تعجب کی بات ہے. تو اللہ والوں کی صحبت ہے کہ اس سے قلب میں صحت مند دل پیدا ہوتا ہے, جس کو قرآن پاک میں قلب سلیم سے فرمایا. قرآن پاک نے اس کا نام قلب سلیم رکھا, دوسری جگہ اس کا ذکر قلب منیب سے آیا کہ قلب منیب نام رکھا, انابت والا, رجوع کرنے والا. حدیث شریف میں اس قلب کا نام قلب مخموم آیا, اور اس کو کہتے ہیں اچھا دل, اللہ والا دل, صحت مند دل. اور یہ دل بنتا ہے اہل دل یعنی اللہ والوں کی صحبت سے. اگلے شعر میں حضرت نے فرمایا کہ خدا کی سرکشی سے خودکشی ہے مال و دولت میں. کہ جو شخص یہ سمجھے کہ بس مال مل جائے یہی میرے سب کچھ ہے, کیونکہ حضرت نے فرمایا کہ اب ہمارے یہاں کیا ہے, کسی کی گاڑی دیکھی, مکان دیکھا, موبائل اچھا دیکھا, اور کپڑے اچھے, چشمہ, جوتے, صاحب اس فلاں بندے پر اللہ کا بڑا فضل ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ فضل کی نشانی نہیں ہے, کیونکہ یہ قارون, فرعون وغیرہ کی میراث ہے. اللہ تعالی کے فضل کی جو نشانی, اس کو سمجھایا کہ جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی, جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی, ترک کرتا ہے کار شیطانی. یعنی گناہ, شیطانی کام کا چھوڑ دینا, یہ اللہ تعالی کے فضل کی نشانی ہے. فرمایا اگر سکون مال و دولت میں ہی ہوتا تو دنیا میں یہ مال و دولت والے خودکشی کیوں کرتے, اور اگر مال و دولت والا وہ فرما برداری کرے تو ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اس لیے فرمایا خدا کی سرکشی سے خودکشی ہے مال و دولت میں. مال و دولت سے چین اور سکون نہیں ملے گا, اگرچہ ایئر کنڈیشن لگا لے, بلکہ سینٹرلی ایئر کنڈیشن بنا دے اپنے گھر کو, آفس کو, لیکن گناہ اور نافرمانی نہیں چھوڑی. تو حضرت فرمایا کہ ایئر کنڈیشن میں بھی اس کے قلب میں بے چینی, بے سکونی, پریشان اور بے چین رہے گا. آگے کیا فرمایا, خدا کی سرکشی سے خودکشی ہے مال و دولت میں, کبھی اللہ والوں سے ایسا نہیں سنا جاتا. یعنی کسی اللہ والے تو ان کی تو کیا شان ہے, ان کے کسی غلام نے بھی خودکشی نہیں کی. ارے ایک مسلمان گناہگار بھی ہو, عام مسلمان, وہ مسلمان کو کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے, تسبیح ہاتھ میں لیتا ہے, ٹوپی سر پر رکھتا ہے, مسجد میں جا کر سجدے میں گر کر اللہ سے رونا شروع کر دیتا ہے. وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے, اس کی پریشانی وہی کی وہی ہوتی ہے, لیکن اب اس کے قلب کے سکون کا عالم کچھ اور ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اسے پوچھتے بھائی کیا تمہارا مسئلہ حل ہو گیا؟ کہا مسئلہ حل نہیں ہوا. کہا تمہارے چہرے پر اطمینان؟ کہا بھائی بات یہ ہے کہ جو مسئلے کا حل کرنے والا ہے, جو مشکل کشا ہے, اب اس کے حضور میں, اس کے قدموں میں میں نے سر رکھ دیا, اب مجھے ایک امید ہو گئی ہے کہ میرا کام بن جائے گا, اب میرے دل میں سکون ہے. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے کی برکتیں. آگے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقویٰ پر. کہ یہ سکون ہے دل, یہ زمین سے ملنے والی چیز نہیں ہے, یہ آسمان سے اترنے والی چیز ہے. और किसको मिलता है, किस तरह मिलता है, किसको मिलता है? तकवा की बरकत से अहले तकवा को मिलता है, यानी गुनाह को छोड़ने की बरकत से तारीख मासियत गुनाह छोड़ने वाले को मिलता है, यानी इसके कल्ब के सुकून का वो आलम होता है कि हजरत फरमाते थे कि बेचैन दिल इसके पास बैठकर चैन और करार पाता है, सुकून दिल उतरता है फलक से अहले तकवा पर। बिदू हुक्म खुदा साइंसदान फिर कैसे पा जाता, ये साइंसदान के इख्तियार की चीज नहीं है, वो साइंसदान मशीन बनाता है कि मैं रेक्टर स्केल पर कितने मैग्नीट्यूड का जलजला आया उसको नापूं, पता है जलजला आया मशीन समेत अंदर घुस गया, लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमान को एक ताकत का पता बताया है, एक चीज एक सबब बताया है कि जिससे जलजला जो आने वाला है साइंसदान उसको रोक नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने एक सबब बताया है कि उस सबब को इख्तियार करो तो वो रुक भी सकता है, और वो सबब क्या, हदीस शरीफ में आया इन दुआ यनफाऊ मिम्मा नजल व मिम्मा लम यनजिल, कि दुआ वो चीज है जो मुसीबत आ गई उस मुसीबत को फायदा यानी दूर करती है, और जो मुसीबत अभी आई नहीं आने वाली है उसको रोक देती है दुआ, लेकिन दुआ की कसरत मुराद है यहां पे, कसीर दुआ, इसलिए आप सब फरमाया आगे फाइन्ना इबाद अल्लाह अलैकुम बिद्दुआ, ये अल्लाह के बंदो दुआ को लाजिम पकड़ लो तो मुसीबत रुक भी सकती है, सुभान, बला टल भी सकती है, आई भी बला सैलाब तूफान आया वो वापस पलट सकता है, गर्क हो सकता है, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ताला ने एक अपने कमजोर बंदे को एक असहारा दिया है कि हमसे मांगो, तुम क्या हमसे रो हमसे गिड़गड़ाओ, वो मुसीबत तुम नहीं हम दूर कर देंगे, उस मुसीबत को तुम्हारे लिए नेमत बना देंगे। आगे क्या फरमाया, अगर सुकून दिल होता पेट्रोल के मानिन, अगर सुकून दिल होता पेट्रोल के मानिन, पेट्रोल की तरह इसका भी कोई कुआं होता तो जमीन में करके बोरिंग इसको हर काफिर भी पा जाता, सुभान अल्लाह, सब ड्रिप सारी बोरिंग की मशीनें उनके पास, ड्रिल मशीनें उनके पास, वो बोरिंग करके उस पर कब्जा कर लेते, फिर सुपरमार्केटों में रखते, मुसलमान भी लाइन में लग के उसको खरीदता। फरमाया नहीं, ये तकवा की बरकत से अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की बरकत से एक गरीब मुसलमान भी इसको पाता है, रोता है अल्लाह से गिड़गिड़ाता है और कल्ब को सुकून हासिल होता है। आगे हजरत वाला ने फरमाया कि बुतों के इश्क से दुनिया में हर आशिक हुआ पागल, बुतों से मुराद हसीन औरतें, ये औरतें नामहरम और लड़के जो इनके चक्कर में पड़ा, फेसबुक हो सोशल वर्क नेटवर्किंग की कोई भी वेबसाइट हो एसएमएस हो ट्वेंट ट्वेंट करें ट्विटर पे या किसी पे या डेटिंग वेबसाइट्स हो, अब वो लगा हुआ इश्कबाजी के चक्कर में तो इसका अंजाम पागलपन है, क्योंकि सुकून बर्बाद होगा, सुकून खत्म हुआ उसको क्या, जिसका सुकून खत्म हो जाए वो क्या कहलाता, पागल। और हजरत ने फरमाया कि हमारे यहां पहले पाकिस्तान में एक ही पागलखाना मशहूर था, लोग उसी को जानते थे, उसका नाम था गिद्दू बंदर। फरमाया उसका नाम गिद्दू बंदर क्यों रखा, उसकी वजह यह है कि यह दो काम करता है, यह है गिद्ध और बंदर से। गिद्ध कहते हैं करगस और वो जानवर जो कि मुर्दार खाता है, इतना ऊंचा उड़ता है कि दिखाई नहीं देता, लेकिन जहां मरी हुई भैंस मरा हुआ जानवर नजर आता है वहीं पर उसका जहाज लैंड करता है। तो ये गिद्ध वाला काम क्या है कि मुर्दों पर मर रहा है, इन लैलाओं पर, अल्लाह जिंदा हकीकी मौला को छोड़कर इन मरने वाली लैलाओं पर मर रहा है, तो गिद्ध हुआ ना ये। और बंदर क्यों है, कि उसको खुश करने के लिए बंदर की तरह हरकतें करता है, उसको खुश करने के लिए लैला को बंदर की तरह हरकतें करता है, तो इसलिए फरमाया कि उसका नाम क्या रखा, गिद्दू बंदर। और नींद उड़ जाती है और फिर जिस लैला के लिए मरा था वो लैला कहीं और पैसा इससे ले दूसरे पे खर्च कर दे, बेवकूफ उसको बना, ये बेवकूफी का सारा काम है, इश्कबाजी। वो इश्कबाजी का तो मंजर यह है, शायर ने कहा, आशिक ने अपना दुखड़ा सुनाया, उसने कहा किसी लैला से कि अब आशिक और माशूका का यानी लैला और मजनू का मुकालमा देखिए। मैंने कहा दिल रुबा, अभी इश्कबाजी के आगाज हो रहा है, मैंने कहा दिल रुबा, उसने कहा बैलेंस भिजवा। मैंने कहा दिल रुबा, उसने कहा बेवकूफ फंस गया, इससे बैलेंस मांगो। मैंने कहा दिल रुबा, उसने कहा बैलेंस भिजवा। मैंने कहा पैसे नहीं, उसने कहा कैसे नहीं, मुझ में इश्कबाजी करता है। यानी एक आदमी जिसकी जेब में फूटी कौड़ी ना हो उससे कोई नहीं फंसेगी ना, नोट निकाल नोट, बगैर मुफ्त में इश्कबाजी। मैंने कहा पैसे नहीं, उसने कहा कैसे नहीं। मैंने कहा महंगाई है, उसने कहा जा इसे तू मेरा भाई है। तो बुतों के इश्क से दुनिया में हर आशिक हुआ पागल, कि सारी जिंदगी मेहनत की, पैसे दिए उसको, आखिर में जवाब यही मिला, डैडी कहते हैं कि अभी जो है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो है ना वो अपने पांव पर खड़ा नहीं हुआ, इसलिए वो मेरी इंगेजमेंट कहीं और हो गई है। फिर बेचारा रोते हुए, पहले जमाने में तो तंबू लगते थे, तंबू टेंट लगते थे, अब तो हॉल बुक करने पड़ते हैं, अब तो बैंक्वेट हॉल आ गए, एयर कंडीशन जनाब, पहले तो तंबू लगते थे। तो फिर वो बेचारा आशिक आंसू बहाता हुआ अपनी लैला का तंबू खुद लगाता था। और फिर दो चार साल बाद मुलाकात हुई, पुरानी माशूका नजर आई, उसने अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, बच्चा साथ में, मम्मी ये कौन है, कहा बेटा ये तुम्हारे मामू है। कल आना तो आखिर में यही सुनने को मिला। तो बुतों के इश्क से दुनिया में हर आशिक हुआ पागल। हाँ सुभान अल्लाह, फरमाया उसकी वजह यह कि नींद उड़ती है, अब रात भर उसके लिए तारे गिनता है, और बेवकूफों की तरह ब्लेड से या किसी चीज से काट कर वो नाम लिखते हैं जनाब हम। तो बुतों के इश्क से दुनिया में हर आशिक हुआ पागल, नतीजा पागलपन निकलता है। इसलिए फरमाया ये जो घूम रहे होते हैं ना, ये जो इनमें से 80% पागल, ये इश्कबाजी वाले होते हैं, या किसी लड़के के इश्क में, किसी लड़के के चक्कर में, या किसी लड़की के चक्कर में। और आगे बढ़ जाए, फरमाया पागल क्यों होते हैं, गुनाहों से अगर सुकून पाता तो क्यों पागल कहा जाता। फरमाया यही है, जो लैला के आशिक होते हैं वो पागल बनते हैं, और जो मौला के आशिक होते हैं उनकी सोबत से पागल अच्छे हो जाते हैं। वाह, इसलिए एक जुमला और बड़ा प्यारा जुमला हजरत का, फरमाया कि लैला के आशिक की खोपड़ी पर जूते पड़ते हैं, पकड़ा जाता है, अगरचे कितना ही मॉडर्न दौर हो फिर भी पकड़ा जाए जूते ही खाता है। बल्कि यूरोप में भी यही होता है, यूरोप में भी कोई किसी को छेड़ दे ना तो उसको भी जूते ही पड़ते हैं, जिसको बड़ा आइडियल समझते हैं वहां भी जूते ही खाता है। तो इसलिए फरमाया कि लैला के आशिक की खोपड़ी पर जूते पड़ते हैं और मौला के आशिकों के जूते उठाए जाते हैं। सुभान अल्लाह, फरमाया फैसला खुद ही कर लो, खोपड़ी पर जूते खाने या जूते उठवाने हैं, लेकिन फरमाया मौला के आशिक जूते उठवाने के लिए ना बनना। हाँ, ये तो अल्लाह उनको इज्जत खुद देते हैं, लेकिन तुम ये नियत ना करना, और अगर कोई जूता ना उठाए खुद ही उठाना, बल्कि इसी का रखना कि मैं खुद उठाऊं जूता, लेकिन अल्लाह ताला जो इज्जत अता फरमाते हैं वो चीज ही कुछ और होती है। लैला के आशिक की खोपड़ी पर जूते पड़ते हैं, और फिर फरमाया क्या सुनने को मिलता है, मारो साले को बदमाश को, और वो जो रकीब क्या कहते हैं वो भी मारते हैं, रकीब भी मारते हैं, कहते हैं साले ने बड़े मजे किए, मारो इसको, ये आलम होता है। आगे हजरत ने फिर समझाया कि देखो बच्चों, गंदे अमल से, अमरदों से दूर हो जाओ, खासतौर पे वो लड़के जिनकी दाढ़ी मूछ नहीं आई, छोटे कम उम्र है, यह दाढ़ी मूछ आ गई फिर भी उन जी चाहता है कि उनको जो है वो मैंगो जूस पिलाया जाए और उन्हीं को चूस किया जाए और उनको दस्तरखान पर आओ 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 करीब आकर बैठो, टांग पे टांग भी रख दी और उन्हीं को पूछा जा रहा है और उन्हीं के चेहरे पर नूर भी नजर आ रहा है। और वो बुढ़ा जो 40 साल से इबादत कर रहा है उसके चेहरे पर नूर नहीं है। तो इसका मतलब ये जुल्मत जिसके कल्बे होती है उसको नूरानी चेहरे पर भी अंधेरे नजर आते हैं और जिसके कल में नूर होता है उसको नूरानी चेहरे नूर नजाले नजर आते हैं। तो इसलिए फरमाया कि इस ऐसे काम ना करो वरना किसी गलीज हरकत में मुबतला हो गए तो फरमाया अच्छा अमल नहीं है। अगर ये फेल अच्छा था खुदा पत्थर ना बरसाता उस कौम को जो अजाब दिया अल्लाह ताला ने कि जमीन को पलट दिया आसमान पर ले जाकर फिर पत्थर बरसाए, फरमाया ये काम इतना होता। अल्लाह ताला इतना अजाब और उस फेल खबीस फेल फरमाया कि खबीस है ये कानत तामलु खबाइस। आगे हजरत वाला फरमाते हैं नहीं मुमकिन था उनकी राह में ये मेरा कदम रखना। क्या आप अजीब बात, नहीं मुमकिन था उनकी राह में ये मेरा कदम रखना, मुझे ये तौफीक मिलती इतना अपने नफ्स की शरारत गलाजतों से मैं वाकिफ कैसे कमीनेपन अल्लाह ताला की सत्तारी का मामला, लेकिन ये तौफीक दी क्यों? अगर दिल जज्बे करम की नहीं कोई सदा पाता, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से जज्ब होता है, अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक मिलती है, अल्लाह ताला का करम होता है कि जिसको अपना बनाना चाहते हैं किसी अल्लाह वाले के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देते हैं, उसके दिल में अल्लाह वाले की मोहब्बत डाल देते हैं, अल्लाह वाले के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देते हैं, वो उस पर शफकत करता है, मेहरबानी करता है, मोहब्बत के साथ उसकी जमीन दिल की जमीन पर आबियारी करता है और अल्लाह की मोहब्बत के अच्छे अखलाक के फल और फूल और पौधे लगाता है, फिर वो बढ़ता है तो शुक्र अदा करता है और शेख को खिताब करके कहता है आप तो मेरे किसान हैं, आप के मेरे मुरब्बी हैं, आपने मुझ पर मेहनत फरमाई, आपका एहसान है ए मेरे शेख, उस पर फिदा हो जाता है और कहता है बज़बान हाल कि तूने मुझको क्या से क्या शौके फिरावा कर दिया, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना कर दिया। और सारी जिंदगी शेख का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसकी बरकत से मिला, उसके सदके में मिला, शेख का शुक्रिया, उसकी औलाद का शुक्रिया, उस सरजमीन का शुक्रिया अदा करता है। यह भी अल्लाह के रास्ते का अदब है, उसकी उस सरजमीन का, उस जगह का, उस शेख का, उसकी औलाद का। यहां तक के हमारे बुजुर्गों ने तो यह तक फरमाया कि उसकी गली के कुत्ते का भी अदब है, उसके भंगी का भी अदब किया हमारे बुजुर्गों ने। क्यों? सुभान अल्लाह, सिर्फ ये कि एक एहसान है। और हजरत फरमाते अब ये क्या है कि साहब ये क्या बात है, फरमाए एक बीवी की वजह से पूरे ससुराल का इकराम करते हो। हाँ एक बीवी, भाई एक बीवी से तो तुम्हारा मतलब है ना, क्या पूरे ससुराल को तोहफे देते फिर रहे कि खाला को भी दो, फूफी को भी दो, फला को भी दो, उसको भी दो, चचा को भी जोड़ा दो, फला को भी दो, फिर सारे खानदान की दावत हो रही है। अरे भाई शादी में तुमको बीवी से मतलब है, क्यों पूरे मोहल्ले को बुला रहे हो, पूरे शहर को बुला रहे हो, पूरी दुनिया से लोग क्यों बुला रहे हो? कहते नहीं साहब ये तो करना पड़ता है। वाह जब एक लैला की मोहब्बत में कितनों का मामला करना पड़ा है तो अल्लाह ताला की मोहब्बत में मेरे प्यारे दोस्तों शेख का, उसकी औलाद का, उसके मुरीदों का, उसके भंगी का भी, उसके चौकीदार का भी। इसलिए बुजुर्गों ने यहां तक फरमाया कि शेख की खानका के जो पासबान है उनका भी इकराम करे। और यहां तक भी समझाया देखो किसी मामले में दखल मत दो कि तुमने ये क्यों किया ये क्यों किया, नहीं फरमाया अपने मतलब रखो उनसे, असल से मतलब रखो, ये भी अदब सिखाया। अब कोई एसपी के पास जाए अपने काम के और एसपी को जाकर बोले कि साहब वो जो आपका चपरासी बाहर लेगा कश पे कश लगा रहा है, वो कहेगा तू अपने काम के लिए आया उसको तुझे क्या मतलब है, उसकी कश्मकश मैं जानू वो जाने, तू इस कश्मकश में क्यों मुबतला है? भाई शेख से मतलब ये है, अदब अदब है ये। तो बीवी का अदब है तो कहते हैं पूछते हैं मौलाना साहब या किसी दोस्त से पूछते कि मैं पहली दफा मिलने जा रहा हूं, कोई आप बताएं रात शादी की रात है मुलाकात होगी, क्या गिफ्ट दूं उसको कि जिससे मुझे लिफ्ट मिल जाए? लो जनाब क्या वो गिफ्ट देना कोई शरण कुछ वो हैसियत नहीं है, मोहब्बत है तोहफा, लेकिन उसके लिए इतनी फिक्र है कि उसको गिफ्ट देने की फिक्र हो रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यह है, इसको कहते हैं मोहब्बत के आदाब, लैला की मोहब्बत के अदब है तो मौला की मोहब्बत का अदब ना होगा और मौला का रास्ता बताने वालों का अदब ना होगा? तो ये जज्ब अल्लाह ताला का करम और एहसान है, ये तौफीकात दिल में आता है कि देखो ये करो ये ना करो, ये सब ये अल्लाह ताला का कर्म है, कितना एहसान है। देखिए हम हालत देखे अभी, एन इस वक्त कारोबार का टाइम है, एन इस वक्त कैसा टाइम है, लेकिन कितना एहसान अल्लाह ताला ने अपने कर्म से हमें जमा फरमा दिया, ये उनका कर्म है। सब्जी लाने का वक्त है ये तो, या जोरू का गुलाम है तो सब्जी काटने का भी वक्त है, लेकिन सिर्फ गुलाम के लिए नहीं, ये तो मोहब्बत की बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम हाथ से काम फरमाते थे, लादे ये जोरू का गुलाम नहीं है कि एक अजीब हमारे अजीब मामला है, एक आदमी अगर बीवी से हुस्न सलूक करे कहते जोरू का गुलाम है। अरे भाई ये क्या बात, ये तो शरीयत की तालीम है कि मोहब्बत से मामला रखो उसके साथ, उसकी मदद कर दो। लादे एक साहब ने कहा, एक साहब को किसी ने ताना दिया, तुम तो जोरू के गुलाम हो, सुना है तुम उसके साथ खाना मिलकर पकाते हो। तो उसने कहा भाई इसमें कौन सी बुरी बात है, वो भी तो मेरी हेल्प करती है। उसने कहा वो कैसे, कहा जब मैं बर्तन धोता हूं वो मुझे पानी गर्म करके देती है। तो ये मिलजुल के काम होता है हमारा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बीवी से मोहब्बत करना इसका मतलब ये नहीं कि गुलामी है, ये तो मोहब्बत है, शरीयत की तालीम है। मां बाप की मोहब्बत सुभान अल्लाह वो सुपीरियर लेवल पर है, वो आला दर्जे पर है। लादा बीवी की मोहब्बत है, मां बाप की, ये सब चीजें हैं सीखने की हैं कि कैसे तवाजुन के साथ बैलेंस रखें। अल्लाह ताला की मोहब्बत है, शेख की मोहब्बत है, मां बाप की मोहब्बत है, बीवी की मोहब्बत है, सब सीखने की चीजें, या आदाब है, हर एक के हुकूक एक राइट है, हर एक अल्लाह ताला ने एक बना दिया कि सबका ख्याल करना है भाई। और करम देखिए, इन तमाम मोहब्बत को अपनी मोहब्बत के खाते में लिखते हैं, बताइए मां बाप से मोहब्बत, इसको भी अल्लाह अपनी मोहब्बत के खाते में लिखते हैं, उनकी खिदमत करे, उनका इकराम करे, इतना तक सिखाया, कंधे भी नरम रखो, खबरदार कंधे भी ऐसे ना चढ़ाना है, वक्फिर लहुमा जनाहज़्ज़ुल, कंधे भी नरम रखो, उनके सामने जो है तेवरी भी ना चढ़ाओ, जबान तो बंद रखनी है, तेवरी भी ना चढ़ाना, यहां तक कि अगर वो जुल्म भी कर दे उस भी मत बोलना। अल्लाह कितना अजीम उनका एहसान, कितना अजमत सिखाई, साथ बीवियों के लिए भी समझाया कि देखो उनसे गलती हो जाएगी, आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, उनके साथ भलाई से पेश आना, गलतियों को माफ करना। अल्लाह अकबर, यही बीवी को सिखाया कि देखो अल्लाह ताला ने शौहर का दर्जा रखा है, अगर वो नरमी करता है मोहब्बत करता है तो उसे उसका अदब करो, उसकी खिदमत को अपनी जन्नत समझो, वो तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा है बहुत बड़ा। शौहर की खिदमत करो, अपनी बेटियों को अपनी बहनों को ये बात सिखाए कि देखो बेटा अगर शौहर कुछ कह दे, बर्तन है आपस में रहने वाले बर्तन बच जाते हैं, लेकिन जरा जरा सी बात पर मोबाइल फोन करके अपने घरों को आग मत लगाओ, तहम्मुल करो, बर्दाश्त करो। मां बाप बेटे को समझाए, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मां बाप को समझाया कि मां बाप बेटे को समझाए कि बेटा वो पराए घर से आई है, किसी की बेटी है, वो भी हमारी भी बेटी किसी के घर में, अगर कोई बात हो उसको बर्दाश्त करो। उसी तरह से मां बाप बेटियों को भी समझाए कि बेटा शौहर है, कभी इंसान है, कभी गलती हो जाती है, लेकिन उसको गोया पैचअप करने की कोशिश करें। वक्त है, देखिए ना, इन दो दोस्त होते हैं, कई काम करते हैं, मोहब्बत का एक जमाना होता है, ऐसा ऐसा मुनासबत पैदा हो जाती है। अब यह भी एक अजीब बात रखी, 15 साल शादी के हो गए, 6-7-8 बच्चे हो गए, मौलाना साहब मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूं। है भाई खैरियत, 6 बच्चे 15 साल, क्यों भाई? वो असल में मुनासबत नहीं है। ये मुनासबत अजीब नाम रखा, मुनासबत नहीं है। ये जो 6 बच्चे हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहना मुनासबत नहीं है। देखिए शेख बुजुर्गों ने इतना सख्त सिखाया है कि देखो जब शेख से किसी रिश्ता रखो تو یہ نہیں ہے کہ شیخ کے دوسرے مرید یا دوسرے علماء یا دوسرے اللہ والے جی ہمیں ان سے مناسبت نہیں ہے تو ان کو گویا سلام بھی نہیں کرنا. یہ عجیب نام رکھا مناسبت کا. ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ دیکھو حضرت والا رحمت اللہ علیہ تاکید فرماتے تھے, وہ حضرات جو دوسرے شہروں میں یا دوسرے ملکوں میں ہوتے تھے ان کو تاکید فرماتے تھے کہ دیکھو وہاں پر کوئی مجلس تلاش کرو, تبلیغی جماعت والے ہو, کوئی عالم ہو, اس کے پاس بیٹھا کرو. بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت وہاں کوئی خانقاہ کا کام صحبت اللہ والے ایسے نہیں ہے. فرمایا بھائی کوئی عالم ہو اس کے پاس بیٹھو, کسی تبلیغ میں جاؤ ان کے ساتھ رہو. اتنا سمجھایا مناسبت نہیں ہے. بقول ہمارے دوست کے جھاپو کے اتنا زمانہ گزر گیا ابھی بھی مناسبت, بھائی پیر بھائی کو سلام کیوں نہیں کر رہا, جی مناسبت نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے. ساری دنیا کے کام انکم ٹیکس والے سے مناسبت نہیں ہوتی, کیسے جھک کر وہاں تو جھک کر سلام کرتے. تو میرے دوستو اللہ تعالی کی محبت میں مناسبت کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس سے تعلق یا سلام دعا اور اچھا برتاؤ بھی نہ کرنا, بلکہ مناسبت یہ تھا کہ جی اس سے کام کرنا ہے اس سے نہیں کرنا. ٹھیک ہے آپ کو اس میں مناسبت نہیں ہے, اس سے آپ کاروباری معاملہ نہ رکھے, ٹھیک ہے. لیکن مناسبت کے نام کو پر یہ کہ مسلمان کو سلام بھی نہیں کر رہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. تو یہ جس بڑی نعمت ہے. آخر میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر. یعنی حضرت والا اس میں اپنی ایک بشری, ایک اللہ والے کی بشری کیفیت کو بیان کیا کہ میں جب اللہ کی محبت بیان کرتا ہوں تو اس بشری کیفیت سے تھک جاتا ہوں. ابھی عمرے کا سفر تھا. حضرت والا ہمارے پیارے شیخ دامت برکاتہم جو تشریف فرما ہے اور حضرت کے آتے ہی دیکھیے مضمون اور یعنی کیفیت ہی مجلس کا رنگ ہی ماشاء اللہ. اللہ تعالی سلامت رکھے. اور اس کرسی پر حضرت والا کو ہمارے شیخ دامت برکاتہم کو ہمارے شیخ اول حضرت وغلا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نہیں حضرت نے حکم فرمایا تھا اس پر تشریف رکھے. اپنی حیات مبارکہ میں, خواب میں نہیں فرمایا تھا, اپنی زبان سے فرمایا تھا, بار بار فرمایا تھا, بیداری میں فرمایا تھا, خواب میں نہیں فرمایا تھا, بیداری میں فرمایا تھا کہ تشریف رکھے عمرے کے سفر. یہ تو کئی اسفار کا, چونکہ عمرے کا سفر بھی تازہ تھا ماشاءاللہ. مکہ شریف, مدینہ شریف, جدہ میں کئی حضرات, حضرت علماء, حضرت کے خلفاء, حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے حضرت کے ہاتھ پر تجدید کی بیعت ہوئے, بڑے بڑے علماء حضرات وہاں پر, پھر وہاں ایک بڑے محدث عرب وہاں کے رہنے والے وہ حضرت اجازت حدیث کے لیے, اور دوسرے حضرات ماشاءاللہ ایک عجیب رونق کے مجلس بھی ہوتی تھی مسجد نبوی میں حضرت جہاں, وہاں سب حضرات ملنے کو آنا, اور پھر ماشاءاللہ کھانے پر کتنا ایک عجیب رونق. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اب وہ ایک بشری کیفیت یہ تھی کہ بھائی ہر ایک کا خیال آئے, اس کے ساتھ محبت سے ملے اور سب. اور اس بشری کیفیت میں جسم کو وہ راحت نہ مل سکی جس کا جسم متقاضی ہے اور جو جسم چاہتا ہے. لیکن اس پر کیا فرماتے ہیں, اگلے مثلے میں فرمایا مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا, میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر, مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا. یہ روحانی کیفیت ہے, وہ بشری کیفیت ہے, یہ روحانی کیفیت ہے. یہ روح اور جسم کا وہ ملاپ ہے جس ان دونوں کے ملاپ سے ایک اللہ والا ہوتا ہے. لہٰذا بشری کیفیت تھے, ایک ہے بشری کیفیت کہ تھک گئے, لیکن روحانی کیفیت یہ ہے کہ نہیں وہ درد ہوتا ہے. میرے پیارے دوستوں, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس طرح جب ماں کی چھاتی میں جب بچہ دیر تک سوتا رہتا ہے وہ دودھ نہیں پیتا تو اس سے درد پیدا ہوتا ہے, وہ ماں بچے کو مار مار کے اٹھاتی ہے دودھ پلاتی ہے. یہ اس کی کمال شفقت, کمال محبت ہوتا ہے کہ وہ درد منتقل کرتی ہے. فرماتے ہیں ایسے ہی اللہ والوں کے ساتھ رہو, اللہ سے مانگو کہ کب ان کے روحانی پستانوں کے اندر وہ درد پیدا ہو اور محبت کا اور روحانیت کا یہ دودھ پلائیں, جس سے میرے پیارے دوستو پھر اس مرید کی شاگرد کی ایمانی اور روحانی ترقی ہوتی ہے, یہاں تک کہ کرتے کرتے وہ واقعی فیض یافتہ بن جاتا ہے, گناہوں کو چھوڑ کر اخلاق یافتہ, حواس باختہ, اخلاق باختہ، شرم و حیا باختہ نہیں، بلکہ شرم و حیا اخلاق اور اللہ تعالیٰ کی نسبت اور تعلق مع اللہ، شریعت و سنت پر عمل کرنے والا وہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان گزارشات کو قبول فرما کر سب سے پہلے میں محتاج ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.